लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। प्रभु दाऊद को याद कर और उसके समस्त कष्टों को, प्रभु के सामने उसकी शपथ को, याकूब के सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति उसकी मन्नत को, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपनी शैया पर विश्राम नहीं करूंगा, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, अपनी पलकों को झपकी नहीं लेने दूंगा, जब तक कि मैं ईश्वर के लिए स्थान न पाऊं, याकूब के सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए निवास। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन के प्रथम 5 पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 18 पदों वाले इस गीत में भजनकार तीर्थयात्रियों से आग्रह करता है कि वे दाऊद और याकूब की मन्नतों को याद करें। वह स्मरण दिलाता है कि दाऊद ने जब तक सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की मंजूषा का प्रतिष्ठापन नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने विश्राम नहीं किया था। सियों पर्वत की ओर आरोहित तीर्थयात्री भी यही चाहते थे कि जेरूसलम के नए मंदिर को ईश्वर का धाम होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कि वह दाऊद और याकूब के युग में था। मंदिर का याजक तीर्थयात्रियों का आह्वान करता है और याद दिलाता है कि दाऊद और उनके पूर्वज याकूब ने ईश्वर की मंजूषा को मंदिर में एक विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठापित किया था। और अब ईसा पूर्व 500वें वर्ष में नए मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्रभु भक्तों से यही अपेक्षा की जा रही थी कि वे नए मंदिर का अनुष्ठान समारोह सम्पन्न कर उसमें प्रभु की मंजूषा के लिए स्थान तय करें। ईश्वर के लिए विशिष्ट स्थान को प्रतिष्ठापित करने के विषय में हमने आपको बताया था कि बाइबल धर्म ग्रंथ के दोनों ही व्यवस्थानों में ईश्वर के विशिष्ट धाम का जिक्र मिलता है, जिसे धर्म तत्व वैज्ञानिकों और ईश शास्त्रियों ने प्रकाशना का नाम दिया है। नवीन व्यवस्थान में यह प्रकाशना प्रभु येसु ख्रीस्त में हुई। संत योहन के अनुसार शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण।
वचन अनादि था, स्वयं वो ईश्वर। जग भी ज्योति था, जग भव पावन ईश सुहावन धन्य है
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन के 6 से लेकर 10 तक के पदों में भजनकार कहता है, हमने इफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे यार के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चलें, हम उसके पावदान को दंडवत करें। प्रभु, तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। तेरे याजक धार्मिकता के वस्त्र धारण करें, तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। अपने सेवक दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को मत त्याग। बाइबल आचार्यों का मानना है कि 132वां गीत तीर्थयात्रियों द्वारा केवल गाया ही नहीं गया था, अपितु इसे श्रद्धालुओं के हितार्थ अभिनीत भी किया गया था। अभिनयकर्ता लोगों को बताते हैं कि उन्होंने इफ्राता में क्या पाया। उन्होंने इफ्राता में मंजूषा के बारे में सुना था। वास्तव में इफ्राता बेतलहम का प्राचीन नाम था, जिसका शाब्दिक अर्थ है गधों और कपड़े पहनने की जगह। यह दाऊद का जन्म स्थल भी था, हालांकि उस समय तक वहां दाऊद की कोई संतान नहीं बची थी। यह वही जगह थी जहां दाऊद की पूर्वज और दादी रूथ रहा करती थी। इसी के संदर्भ में 132वें भजन में कहा गया है कि उन्होंने इफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे यार के मैदान में पाया। यार का तात्पर्य वन से है, वनों से घिरी उस पहाड़ी से है जहां अबीनादाब के घर का निर्माण हुआ था। इस विषय में समूएल के दूसरे ग्रंथ के 6वें अध्याय के 3रे पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और टीले पर स्थित अबीनादाब के घर से ले जाई गई और जहां से दाऊद और उनके पुरुष विजय गीत के साथ उसे ले गए, जैसा कि समूएल के पहले ग्रंथ के 7वें अध्याय के 1-2 पदों में लिखा है, किरियत अरियाम के निवासी आकर प्रभु की मंजूषा ले गए और उसे अबीनादाब के घर में रख दिया जो टीले पर बसा था। उन्होंने प्रभु की मंजूषा की देखरेख करने के लिए उसके पुत्र एलाजार का अभिषेक किया। तदोपरांत भजनकार कहता है, हम प्रभु के आवास को चलें, हम उसके पावदान को दंडवत करें। प्रभु, तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। मंदिर सियों पर्वत के ऊपर प्रतिष्ठित था और वहीं तक आरोहित होने के लिए याजक लोगों को आमंत्रित करता है, ताकि वे भी प्रभु के चरणों में जाकर उनका दंडवत कर सकें। मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं ने भी अपने सबसे अच्छे वस्त्र धारण कर रखे थे। इसी के संदर्भ में आगे भजन के 9वें और 10वें पदों में भजनकार कहता है, तेरे याजक धार्मिकता के वस्त्र धारण करें, तेरे भक्त आनंद के गीत गाएं। यह इसलिए कि मंजूषा एक बार खो चुकी थी। वह उस समय खो गई थी जब दुष्ट राजा नबूखदनज़र ने ईसा पूर्व 587वें वर्ष में जरूसलम का विनाश कर डाला था। मंजूषा के पुनः मिल जाने के उपरांत याजक प्रभु से विनती करता है कि मंजूषा की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए प्रभु के याजक धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और मंजूषा के मिल जाने के लिए ईश भक्त आनंद के गीत गाएं। श्रोताओं, यहां मनुष्यों के प्रति प्रभु ईश्वर के उद्धारकारी प्रेम की ओर संकेत है। याजक धार्मिकता के वस्त्र धारण करें और प्रभु के भक्त आनंद के गीत गाएं। अभिप्राय स्पष्ट है, ईश्वर में विश्वास करने वालों से आग्रह किया गया है कि वे धार्मिकता के वस्त्र धारण करें, भले कर्म करें और ईश विधान के अनुकूल अपना जीवन यापन करें, ईश्वर के आदर में आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु ईश्वर अपने अभिषिक्त को कभी नहीं त्यागते। प्रभु ईश्वर उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो सदाचार में लगे रहते हैं, अपने जीवन के कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करते हैं तथा प्रभु का स्तुतिगान कर अपने जीवन को साकार करते हैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की याद करते हुए ट्वीट संदेश भेजकर इसको खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में लिखा, मानव तस्करी समकालीन मानवता के शरीर में अब भी घाव बना हुआ है। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मानव प्राणी को वस्तु के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ निर्दोष पीड़ित लोगों के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। विश्व मित्रता दिवस पर ट्वीट संदेश में संत पापा ने कहा, मित्रता जीवन का एक उपहार एवं ईश्वर का वरदान है। मुश्किल समय में हमारे बगल में आने वाले विश्वस्त मित्र प्रभु के स्नेह, उनकी सांत्वना और प्रेम भरी उपस्थिति के प्रतिबिंब हैं। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। समग्र मानव विकास को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के विस्थापित एवं शरणार्थी विभाग के उप सचिव कार्डिनल माइकल चर्नी ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के बारे वैटिकन रेडियो से बातें की। उन्होंने काते कलिसिया में पहली बार मानव तस्करी के शिकार लोगों को प्रत्युत्तर देने वालों के बारे बतलाया और अपराध की व्यापकता पर प्रकाश डाला। कार्डिनल चर्नी ने कहा कि महिला धर्म सामाजी न केवल कलिसिया में मानव तस्करी का जवाब देने वाली पहली व्यक्ति है, बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी भी है। विश्व भर में महिला धर्म सामाजियों ने मानव तस्करी के शिकार लोगों को खोजा, खुलासा किया और उनके लिए एक प्रेरिताई विकसित की है। आज वे मानव तस्करी को दूर करने, उससे बचने, पुनर्वास, एकीकरण एवं जागरूकता बढ़ाने में संलग्न हैं, जो दर्शाता है कि उनकी प्रेरिताई पहले से अधिक विकसित हुई है। तालिथा को महिला धर्म सामाजियों के नेटवर्क का नाम है। यह नेटवर्क सुपीरियर जनरलों के विश्व संगठन के निर्देशन में संचालित है तथा इसकी स्थापना 10 साल पहले हुई है। नेटवर्क का नाम यीशु के शब्द से लिया गया है, जिसको उन्होंने मृत लड़की को जीवन दान देने हेतु कहा था, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। कार्डिनल ने कहा कि संत पापा स्वीकार करते हैं कि मानव तस्करी एक बीमारी है। वे इस तथ्य को पहचानते हैं कि यह एक गहरी जड़ वाली और व्यापक घटना है और एक पापपूर्ण सामाजिक संरचना का परिणाम है जो वास्तव में मानव की वास्तविकता के माध्यम से चलती है। यह सभी ओर फैली हुई है। कार्डिनल ने स्वीकार किया कि इन समस्याओं में से किसी का समाधान रात भर में संभव नहीं है। इसके लिए लंबा समय लगता है और यह लंबा समय ले रहा है। सेव द चिल्ड्रन इटली के नए रिपोर्ट अनुसार यूरोप में संदिग्ध या पहचाने जाने वाले तस्करी के शिकार बच्चे हैं। यूरोप में मानव तस्करी के शिकार 4 में से एक 18 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 3 में से 2 महिलाएं अथवा बालिकाएं हैं। चैरिटी सेव द चिल्ड्रन इटली की एक हाल ही में जारी रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ है कि 2019 में यूरोपीय संघ में पंजीकृत 56% तस्करी के मामले यौन शोषण के लिए तस्करी से संबंधित थे। छोटे अदृश्य गुलाम 2019 शीर्षक पर एक रिपोर्ट मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के एक दिन पहले प्रकाशित किया गया, जिसमें यह गौर किया गया है कि अनुमानतः मानव तस्करी के शिकार लोगों का एक उच्च प्रतिशत इटली में रहने वाला है, जहां एक वर्ष में पीड़ितों की संख्या 9 से 13% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के लेखकों का दावा है कि दस्तावेज तैयार करने के लिए विश्लेषण के लिए लिए गए डेटा में ज्यादातर छिपे हुए मुद्दों के सतह पर की जानकारी है, लेकिन यह पीड़ितों की बढ़ती उम्र और यौन शोषण की व्यापकता की पुष्टि करता है, जिसमें 15 या उससे कम उम्र के 5 पीड़ितों में से एक और 10 तस्करी में से 9 को प्रभावित करने वाले यौन शोषण के शिकार बच्चे हैं। इटली में व्यापार की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि अधिकांश तस्करी वाली लड़कियां नाइजीरिया से हैं, उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया से हैं। ये सभी देश जिनमें गरीबी है और स्कूलों में प्रवेश पाने में कठिनाई होती है, लड़कियों से नौकरी का झूठा वादा कर उन्हें तस्करों के जाल में आसानी से फंसाया और इटली की ओर आने के लिए लुभाया जाता है। रिपोर्ट में कई प्रत्यक्ष प्रमाण दिए गए हैं जो बतलाते हैं कि ऐसे युवा और कमजोर पीड़ितों का यौन शोषण उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। रिपोर्ट में एक अध्याय नाइजीरिया की लड़कियों और महिलाओं की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचता है, जो लीबिया और समुद्र से होते हुए इटली पहुंचते हैं। वहां वे शोषण और हिंसा के शिकार बनते और निर्दयी दलालों के ऋण में फंस जाते हैं, जो उनका शोषण करते और उनके दस्तावेजों को जब्त कर देते हैं, उन्हें गुलाम बना लेते और उनके परिवारों को ब्लैकमेल करते हैं। ओडिशा की अर्चना सोरेंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वार्षिक कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र को परामर्श देगी। एक भारतीय कार्तिक आदिवासी लड़की अर्चना सोरेंग उन 7 युवा जलवायु नेताओं में से एक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने वैश्विक जलवायु संकट पर सलाह देने के लिए चुना है। अर्चना को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई में तेजी लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र को सलाह देने के लिए 27 जुलाई को चुना गया। अर्चना ने ओका समाचार से कहा, हमारे संत पापा सहित बहुत सारे लोग और विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन से चिंतित हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता और पहचान मेरे लिए एक बड़ा सम्मान और अवसर है। उन्होंने कहा, मैं एक कार्तिक और आदिवासी परिवार से आती हूँ, जहाँ बचपन से पर्यावरण का सम्मान, उससे प्रेम और उसकी सुरक्षा की सीख दी जाती है। अतः इस दल के हिस्से के रूप में यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा। हमारे पूर्वज अपने परंपरागत ज्ञान और अभ्यासों द्वारा वर्षों से जंगल एवं प्रकृति के रक्षक रहे थे, और अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम जलवायु संकट का सामना करने में विश्व की अगुवाई करें। उधर पाकिस्तान की कलीसिया ने 25 जुलाई को रेडियो वेरिटास एशिया उर्दू सेवा शुरू की, जो देश में इस तरह की पहली समाचार सेवा होगी। पाकिस्तान की कलीसिया अब अपने विश्वास में अधिक गहराई से जुड़ सकती है, क्योंकि उसने समाचार सेवा के रूप में एक पुराने रेडियो सेवा लॉन्च किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।